सत्यवचन। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
Summer प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के प्रेम में और वचन की संगति में बलवंत हो रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इसराइलियों के बारे में देखा कि उन्हें यूसुफ फिरौन के सामने लाया और उन्हें गोशेन में रहने के लिए भूमि दी। फिर हमने यूसुफ के भंडार गृह के बारे में भी देखा, जहां से लोग अनाज लेकर जाते थे, और बहुत से लोग उसी नगर में बसने के लिए भी आ गए। हमने यह भी देखा कि याकूब मरने पर है और उसकी इच्छा है कि उसे कनान देश में दफनाया जाए। इस प्रकार से अध्याय 47 की समाप्ति हुई थी। आज हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति उसके 48 अध्याय से आरंभ करेंगे। यह अध्याय हमें याकूब की आखिरी बीमारी और यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देने के बारे में बताती है। हमें इब्रानियों के पत्र उसके 11 अध्याय और 21 पद में कहा गया है, विश्वास ही से याकूब ने अपने मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर उपासना की। मित्रों, यह अध्याय हमें और अवसर देता है कि हम याकूब के आत्मिक उन्नति की घटनाओं को देख सकें। वह अपने पुराने या पहले जीवन से काफी आगे आ गया है। हो सकता है कि हम ऐसा महसूस करें कि याकूब के पिछले जीवन में ये विशेषताएं मौजूद थी, वे अब इस जीवन के आरंभ के दिनों में नहीं है। लेकिन क्या यह अद्भुत नहीं है कि हम इसे देखें कि आत्मिक जीवन बढ़ने वाला है और प्रगति करता है। यह कोई संवेदनात्मक अनुभव नहीं है जो थोड़ी ही देर में अपने स्थान को ले लेता है, परंतु यह वचन के आधार पर खोजी गई है जो आत्मा के चलाए चलता है। और याकूब के जीवन में पुराने मनुष्यत्व का बहुत अधिक प्रभाव था जब वह एक जवान व्यक्ति था तब, और नए स्वभाव की पहचान नहीं हो पाई जब तक कि वह बूढ़ा ना हो गया। मित्रों, एक बार एक सुंदर दिखने वाली पत्नी आराधना खत्म होने के बाद मेरे पास आई। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सब कुछ चाहिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। मैंने पाया कि वे प्रति रविवार सामने आते हैं। उन्होंने सोचा कि वे कुछ संवेदनात्मक अनुभव को प्राप्त करेंगे जो उन्हें अचानक से एक मजबूत और बढ़ा हुआ मसीही बना देगा। परमेश्वर का वचन हमें दूसरे पत्रस की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से कहता है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। मित्रों, हम याकूब के जीवन में देखते हैं कि हमें आत्मा का फल हमारे अंदर बढ़ने के लिए इंतजार करना चाहिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में उन्नति की संभावना है और परमेश्वर के धैर्य के लिए जो इसकी अनुमति देता है, और हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं कि वह हमारी तरह अंदर आकर उन्नति होने या बढ़ने के लिए कोई दबाव नहीं डालता है। परमेश्वर ने बहुत ही धैर्य के साथ याकूब के साथ व्यवहार किया और वह आपके साथ भी और मेरे साथ भी बड़े धैर्य के साथ व्यवहार करेंगे। हम देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता याकूब से मिलने के लिए जाता है जब याकूब अंतिम बार बीमार पड़ा तब। तो आइए हम उत्पत्ति 48 अध्याय उसके 1-3 पदों को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब ऐसा हुआ कि इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, देख तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रेम नाम अपने दो पुत्रों को साथ लेकर उसके पास चला। जब याकूब को यह बात बताई गई कि देख तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आया है, तो इसराइल अपने आप को संभाल कर खाट पर बैठ गया। तब याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कनान देश के लूज में मुझे दर्शन देकर मुझे आशीष दी। मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बूढ़े व्यक्ति का हृदय कितनी उत्तेजना से भर गया था। यहां उसके चहेता बेटा यूसुफ आता है और अपने दोनों बेटों को भी लाता है जो छोटे ही हैं। याकूब ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पुनः यूसुफ को देख पाएगा, क्योंकि उसने सोचा था कि वह जानवरों के द्वारा मारा गया है। फिर भी वह यूसुफ को मिस्र देश में एक ऊंचे पद पर देखता है और वह परमेश्वर के उस कार्य को देख सकता है कि उसने किस प्रकार उसके जीवन में कार्य किया। याकूब को मिस्र में रहते हुए 17 साल हो गए थे। वह एक बूढ़ा व्यक्ति और मरणासन पर है, परंतु वह अपनी पूरी ताकत को बटोर कर खटिया के कोने में बैठता है। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि उसका दिमाग या अतीत की ओर जाता है जब परमेश्वर ने इसे लूज में दर्शन दिया था, और वह यूसुफ से कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कनान देश के लूज में मुझे दर्शन देकर मुझे आशीष दी। याकूब अपने जीवन की एक लंबी यात्रा पूरी कर चुका है और अब हम याकूब के विश्वास को देखते हैं। अब वह परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास कर रहा है। वह अपने ऊपर डिंग नहीं मार रहा। जब वह जवान था तो वह एक चतुर व्यक्ति था और जो पाना चाहता था वह पा लेता था, या इसलिए उसने सोचा कि वह किसी भी प्रकार से या किसी भी तरीके को वह अपना सकता है। परंतु अब जब वह अपने जीवन के पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो वह इस बात को याद करता है कि कब परमेश्वर ने उसे बेतेल में दर्शन दिया था। दोनों समय, जब वह कनान छोड़कर भाग रहा था तब और जब वह कनान में वापस आ रहा था तब, वह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे वहां दर्शन दिया और मुझे आशीष दी। अब हम याकूब के विश्वास को देखते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 48 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और उसने मुझसे कहा, देख मैं तुझे फूला फला कर अत्यंत बढ़ाऊंगा और मैं तुझे जातियों का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंशजों को यह देश सदा के लिए उनकी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। मित्रों, आइए हम याकूब के परमेश्वर के वायदों पर विशेष ध्यान दें, जिसे याकूब यहां पर बता रहा है, जो पुराने नियम में और नए नियम में देखने को मिलेंगे। उसने हमारे कुलपति से अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वायदा किया। इस वाचा में 3 मुख्य और विशेष बातें हैं। पहला है राष्ट्र, दूसरा भूमि और तीसरा आशीष। परंतु यहां पर याकूब के लिए ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है, मैं तुझे फुला फुला कर अत्यंत बढ़ाऊंगा और मैं तुझे जातियों का मूल बनाऊंगा, और दूसरा है, और तेरे पश्चात तेरे वंशजों को यह देश सदा के लिए उनकी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। और तीसरे भाग की वाचा आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि तुझ में पृथ्वी के सभी परिवार आशीषित होंगे। मित्रों, अभी हम बाइबल के साथ यहां पर बैठे हैं, उसका कारण है कि परमेश्वर ने अपने वायदे के 2/3 हिस्सों को पूरा कर दिया है, जिसकी वाचा उसने हजारों साल पहले बांधी थी। अभी भी वायदे का 1/3 हिस्सा पूर्ण होना बाकी है। यहूदियों के पास आज भी इसराइल देश की भूमि नहीं है, उनके पास थोड़ी सी सीमा है, परंतु यह निश्चित तौर से विवाद का मुद्दा या झगड़े की जड़ है। जब वे परमेश्वर से उस भूमि को प्राप्त करेंगे तो वे वहां पर शांति से रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दाखलता और अंजीर के पेड़ के नीचे होगा, उनकी अपनी संपत्ति होगी और कोई आयकर नहीं लगेगा। या ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग युग का समय हो या सतयुग का समय हो, है या नहीं? लेकिन ऐसा ही होने जा रहा है। हम आगे देखते हैं कि याकूब एप्रेम और मनस्से को आशीर्वाद देता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 48 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अब तेरे दोनों पुत्रों जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए वे मेरे हैं, अर्थात जिस प्रकार रूबेन और शमौन मेरे हैं उसी प्रकार एप्रेम और मनश्शे भी मेरे ही ठहरेंगे, परंतु उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हुए वह तेरी होगी, परंतु उत्तराधिकारी में वे अपने भाइयों के ही वंश में गिने जाएंगे। मित्र, ये दोनों पोते जो यूसुफ के दोनों पुत्र हैं, उनसे एक एक जाति उत्पन्न होगी। और कोई इस निर्णय पर पहुंचता है कि इसराइल में 13 गोत्र हैं, क्योंकि पहले से ही याकूब के 12 पुत्र हैं और अब यूसुफ के दोनों पुत्रों से एक जाति बनने वाली है। यूसुफ का कोई भी गोत्र नहीं था, परंतु एप्रेम और मनस्से के थे। इस प्रकार से या किसी भी व्यक्ति के गणित में 13 ही गोत्र बनते हैं। फिर भी बाइबल सिर्फ 12 गोत्र के बारे में ही हमें बताती है। आप देखेंगे कि लेवी गोत्र को गोत्र की सूची में शामिल नहीं किया गया है। वे महायाजक के गोत्र के हुए और उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई और न ही कोई क्षेत्र, परंतु वे सभी गोत्रों में फैल गए और याजक के रूप में रहे, इसलिए उन्हें गोत्र के रूप में नहीं गिना गया। हो सकता है कि आप इसे कुटिल तरीके की गिनती मानते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसी रीति से गिनता है और परमेश्वर इसी रीति से चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने इसे इस तरह का बनाया। एप्रेम और मनश्शे अभी 17 वर्ष से भी अधिक आयु के हो गए हैं, क्योंकि वे याकूब के मिस्र में आने से पहले ही पैदा हो चुके थे। अब वे दोनों ही एक एक गोत्र बनते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि याकूब का दिमाग फिर से अपनी प्यारी पत्नी राहेल की ओर जाता है, जो यूसुफ की माता थी। हम उत्पत्ति 48 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब मैं पदन से आ रहा था तब मार्ग में इफ्राता पहुंचने से कुछ दूर पहले राहेल कनान देश में मर गई और मैंने उसे वहीं इफ्राता के मार्ग में अर्थात बैतलहम में मिट्टी दी। मेरे प्रिय मित्रों, जब मैं और आप गाना गाते हैं हे छोटे नगर बैतलहम, तो हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में सोचते हैं, परंतु यदि हमें याकूब गाते हुए सुने तो वह मुख्यतः अपनी प्यारी पत्नी राहेल की मृत्यु के बारे में सोचेगा। यहाँ पर वह अपनी मृत्यु शैया पर है और उसका विचार उस स्थान पर जाता है जहां उसने उसे मिट्टी दी थी। यह उसके लिए हृदय विदारक था। हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 48 अध्याय उसके 8 और 9 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब इसराइल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो उसने पूछा, ये कौन है? और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिए हैं। तब उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि याकूब और इसहाक दोनों को ही बुढ़ापे के समय में देखने की समस्या थी? हो सकता है कि सूर्य की रोशनी का इसके साथ कुछ संबंध हुआ हो। यहां तक कि आज भी मध्यवर्ती देशों में आंखों की रोशनी की समस्या या बीमारी है। जब मेरा एक मित्र अरब देश में था तो उसने पाया कि वहां बहुत से बुजुर्ग लोगों को देखने की समस्या है। वे पूर्णतः अंधे नहीं हैं, परंतु वे निश्चित रूप से अच्छी तरह नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम यहां पर देखते हैं कि याकूब इन लड़कों को नहीं पहचान पाया। और हम उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय के 10 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां लिखा है, इसराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण इतनी धुंधली हो गई थी कि उसे दिखाई नहीं देता था। तब यूसुफ उन्हें उसके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगाया। मित्रों, दादाजी के उनके प्रति स्नेह के दिखावे के द्वारा शायद वे लज्जित हो गए थे। हम उत्पत्ति 48 अध्याय उसके 11 और 12 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं, तब इसराइल ने कहा, मुझे आशा न थी कि तेरा मुंह देखूंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें घुटनों के पास से हटाकर और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। मित्रों, ऐसा लगता है कि ये दोनों पोते अपने दादाजी के पास से दूर होने की कोशिश कर रहे थे, जब वह उनके ऊपर उदारता पूर्वक स्नेह दे रहा था। हम उत्पत्ति 48 अध्याय उसके 13 पद में आगे पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने उन दोनों को लिया, एप्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इसराइल के बाएं हो, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इसराइल के दाहिनी ओर हो, फिर उन्हें उसके पास ले गया। मित्रों, यूसुफ बच्चों को उनके दादाजी के पास ला रहा है ताकि वह उन्हें आशीर्वाद दे। जो इसराइल के दाहिने हाथ की ओर सामने खड़ा होगा उसे प्राथमिकता दी जाने वाली थी। उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर रखा जो छोटा था, और बायां हाथ मनश्शे के सिर पर रख दिया, यद्यपि मनश्शे पहला उठा था। मनश्शे के ऊपर एप्रेम को अगुआ बनना है। आगे हम देखेंगे कि मनश्शे का गोत्र एप्रेम के गोत्र की अधीनता में निर्जन प्रदेश की यात्रा करता है, जिसे हम गिनती की पुस्तक में पाएंगे। यहोशू एप्रेम के गोत्र में से आया है, और इसी रीति से कई महान व्यक्ति या पुरुष इस गोत्र से आए हैं। यह प्राथमिकता प्राप्त जाति थी और इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। क्या आपने देखा कि यहां पर क्या हुआ है? यद्यपि याकूब ठीक से नहीं देख सकता है, फिर भी वह यूसुफ से कहता है कि वह क्या कर रहा है। यूसुफ अपने बड़े लड़के को याकूब के दाहिने हाथ की ओर धकेल रहा था और छोटे लड़के को बाएं हाथ की ओर। तो बूढ़े याकूब ने क्या किया? बस उसने अपने हाथ को घुमाया और अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसने छोटे बेटे के सिर पर रख दिया। अब प्रश्न उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन दोनों लड़कों से उसका बहुत कोमल स्नेह था। वे उसके चहेते पुत्र यूसुफ की संतान थे। वह जानबूझकर छोटे लड़के को आशीर्वाद देता है, और मैं सोचता हूं कि उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि याकूब अपने परिवार का छोटा लड़का था और उसने आशीर्वाद प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यहां वह भी आशीर्वाद को छोटे बेटे को ही देता है। यह एक मजेदार सिद्धांत जो पूरे बाइबल या शास्त्र में मिलता है। उदाहरण के रूप में देखें कि जब दाऊद का चुनाव हुआ तो वह यिशै का सबसे छोटा बेटा था। परमेश्वर ने उसे क्यों चुना? मित्रों, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक महान सच्चाई के उदाहरण को रख रहे हैं। परमेश्वर ज्येष्ठ अधिकार या ज्येष्ठ पुत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात स्वाभाविक जन को। वह इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। नए जन्म का होना आवश्यक है। इसीलिए परमेश्वर हमारे रीति रिवाजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम यह कहते हैं कि परिवार में बड़े लड़के को ही परिवार संभालने की जिम्मेदारी होनी है। सही बात है, लेकिन हमेशा बड़े बेटे को ही परमेश्वर नहीं चुनता है। अर्थात परमेश्वर स्वाभाविक पुरुष को नहीं चुनता, वह किसी व्यक्ति को स्वाभाविक योग्यता के कारण से उसे नहीं चुनता है। हम अपने दिनों में इस सत्य को कैसे सीख सकते हैं? कृपया आप मुझे गलत न समझें। परमेश्वर योग्यता को उपयोग कर सकता है, परंतु यह उसे समर्पित होना चाहिए। यदि यह सिर्फ योग्यता के बल पर जागृति ला सके तो हम कई वर्ष पूर्व ही पूरे भारत में जागृति ला चुके होते। हमारे पास चारों ओर मसीही योग्यताएं हैं, परंतु जागृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये योग्यताएं परमेश्वर को समर्पित नहीं है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, यह उससे उत्पन्न हुआ होना चाहिए ताकि उसके लिए उपयोग होने पाए। और यहां पर बूढ़े याकूब ने अपने हाथ को तिरछा बढ़ाया और अपने हाथ बढ़ाकर दोनों लड़कों को आशीर्वाद दिया, लेकिन प्राथमिकता छोटे बेटे को दी। हम उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देते हुए कहा, परमेश्वर जिसके सामने मेरे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक चले, परमेश्वर जो मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे जीवन का चरवाहा बना है। मेरे मित्रों, याकूब यहां पर अपनी आत्मिक ऊंचाई पर पहुंचता है और कहता है, परमेश्वर जो मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे जीवन का चरवाहा बना है। आगे हम उत्पत्ति 48 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, वह दूत जो मुझे सारी बुराइयों से बचाता आया है, इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और तेरे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी पर बहुतायत से बढ़ें। मित्रों, याकूब कहता है, वह दूत जो मुझे सारी बुराइयों से बचाता आया है, इन लड़कों को आशीष दे। उसके पास घमंड करने के लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय एक अद्भुत छुड़ाने वाले या बचाने वाले के। और जैसा उसने कहा, वैसे ही वे पूरे मध्य पूर्व देश में भरते और बढ़ते चले गए। उत्पत्ति 48 अध्याय उसके 17 और 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रेम के सिर पर रखा है, तो यह उसे बुरा लगा, इसलिए उसने पिता का हाथ पकड़ लिया कि वह एप्रेम के सिर पर से उठाकर उसे मनश्शे के सिर पर रखे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा ना कर, क्योंकि पहलौठा तो यह है, इसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रख। मित्रों, यहां पर बूढ़े याकूब की प्रतिक्रिया को देखिए, जिसे हम उत्पत्ति 48 अध्याय उसके 19 पद में इस प्रकार से पाते हैं, परंतु उसके पिता ने इनकार किया और कहा, हे मेरे पुत्र, मैं जानता हूं इससे भी एक जाति उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, फिर भी उसका छोटा भाई इससे भी महान हो जाएगा और इसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। मित्रों, लिखा है इसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी, इसे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यूसुफ के लिए यही अच्छा है कि वह उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि वह स्वयं भी बड़ा नहीं है, वह भी सबसे छोटा ही था और फिर भी उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया गया। हम उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसके 20 और 21 पदों में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इसराइली तेरा नाम लेकर यह आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनश्शे के समान बना दे। इस प्रकार उसने मनश्शे से पहले एप्रेम को स्थान दिया। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के देश में लौटा ले जाएगा। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि याकूब का विश्वास परमेश्वर में है। हम उत्पत्ति 48 अध्याय के 22 पद में आगे पढ़ते हैं, और मैं तुझको और तेरे भाइयों से अधिक उस भूमि का भाग देता हूं जिसे मैंने अपनी तलवार और धनुष द्वारा एमोरियों के हाथ में से ले लिया है। मित्रों, यह यूसुफ है जो अपने दो पुत्रों के द्वारा एक महान विरासत को प्राप्त करेगा। स्पष्ट रूप से यह यूसुफ के लिए याकूब के द्वारा बनाया गया व्यक्तिगत तोहफा या इनाम था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 5 पद में देख सकते हैं। यह सुखार के पर्वत श्रेणी के निकट था जहां यूसुफ को दफनाया गया। यूसुफ के पुत्रों से दो जातियां बनी और सच्चाई यही है कि उनके बराबर करने के लिए उन्हें अधिक क्षेत्र की आवश्यकता थी, और यह भूमि का खंड याकूब ने अमोरियों से खरीदा था, और बाद में उन्होंने जबरदस्ती वापस ले लिया था। याकूब ने उस उपहार को वापस किया और फिर से जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र आज भी झगड़े या विवाद का विषय बना हुआ है। यह वह स्थान है जहां वर्तमान समय में इसराइल पश्चिम किनारे पर बनाना चाहता है। मित्रों, यहां पर हमने देखा कि याकूब अपने प्यारे बेटे यूसुफ के लिए इस बूढ़े अवस्था में भी बहुत कुछ करना चाहता है। उसने उसके दोनों पुत्रों को आशीर्वाद के साथ साथ भूमि भी दी, क्योंकि वह जानता था कि ये दो जातियां हैं। वर्तमान इसराइल आज भी उस क्षेत्र में उन्नति करना चाहता है और वह भूमि विवादों से घिरा है। मित्रों, हम याकूब के जीवन में एक बड़े परिवर्तन को देखते हैं। वह बढ़ती उम्र में परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है। अब वह अपनी ताकत या छल का सहारा नहीं लेता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप याकूब की तरह बूढ़े होने तक का इंतजार मत कीजिए और आज ही निर्णय लीजिए कि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए और अपने जीवन में शांति पाइए। आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले अध्ययन में हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें: कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए: कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।